सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो
जिसको सुनकर ज्ञानी भी जिसको सुनकर ज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी।
सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
विश्व पिता परमात्मा के हम सब करोड़ों करोड़पति महाभाग्यवान संताने देवी परिवार के नाम से इस महापवित्र धाम में हम सब आपस में उपस्थित हैं। उस सागर पिता ने चैतन्य नदी बनाने के कारण इतना कुछ भर दिया है। मैं वो सारा का सारा प्रसाद आप देवी परिवार के साथ बांट के पाना चाहती हूँ और मुझे 42 दिवालियों के विशाल सागर जैसे अनुभव को आपको 40-50 मिनट के लोटे में समा के देना है। बहुत बड़ी परीक्षा है। अच्छा होता कि ये अनुभव किसी बॉटल में भरा हुआ कोई केमिकल टॉनिक होता तो मैं आप सबके सिर में छेद करके इस टॉनिक को आपके अंदर 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 डालती जाती थी ताकि आपको खुद को पुरुषार्थ करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। लेकिन कुछ कुछ मजबूरियां भी होती है, जैसे कि ये मेरी मजबूरी है। मैं क्या बांटू और क्या ना बांटू वो मेरे लिए परेशानी है। आज से 42 वर्ष पहले मैं ईश्वर को ढूंढ रही थी और अनुभव ये मिला कि वो भी मुझे ढूंढ रहा था। तो जब हमारी दोनों की आपस की ये तलाश जारी थी उस समय मैं यूपी में मेरठ में रहा करती थी। मैं 5वीं कक्षा की विद्यार्थी थी। कृष्ण की कट्टर भक्त थी और क्योंकि वो भी मुझे ढूंढ रहा था, वो तो ढूंढ चुका था लेकिन मेरी पहचान में थोड़ी देरी हो गई। आपको ज्ञान योग धारणा और सेवा चार विषय मालूम है। मुझे उसने ईश्वरीय मार्ग में आते आते ज्ञान योग धारणा सेवा और ध्यान ये पांचों विषय पढ़ा दिए। ये मेरा अच्छा नसीब है कि मैं लौकिक में भगवान दास की बेटी हूँ लेकिन बाबा ने उनका नाम भगवान लाल रखा क्योंकि दास शब्द तो बाबा को सुनने को भी पसंद नहीं और उस भगवान लाल ने मेरे शरीर का नाम संतोष रखा। तो मैं 5वीं कक्षा की विद्यार्थी होने पर यह महसूस कर सकती हूँ कि नाम तो संतोष है लेकिन अंदर में तो संतोष नहीं है क्योंकि कोई ना कोई तलाश जारी रहती है और वो ये है कि अगर मैंने जीवन में प्रभु प्राप्ति नहीं की तो मेरा जीवन जीना बेकार है। मैं ध्यान लगाने नहीं बैठी थी मगर पढ़ते पढ़ते बैठी होती थी। मुझे किताबों का ख्याल भी नहीं रहता था और ये जो कृष्णा है ना ये दो गोले वाला, वो मेरे सामने आकर हाथ का गोला नीचे रख के फिर मुझे ऐसे ऐसे करता था। मैं लगातार देखती रह जाती थी क्योंकि बड़ा मोहिनी मुहूर्त सीन होता था और मैं प्रयत्न करती थी कि मैं उसके तक पहुंचूं, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी। मैं उसको ऐसे ऐसे करती थी। मेरे पिता मिलिट्री ऑफिसर थे, वो हमेशा फ्रंट पर ही रहते थे। मेरी माँ को मेरा ऐसा ऐसा करना देख के कुछ दीवानापन सा समझ में आया और उन्होंने, मैं जब जब ऐसा ऐसा करती थी तब तक मेरा ध्यान तोड़ने का प्रयत्न उनका जारी रहता था। और उनका शारीरिक नाम प्रेम कुमारी था, था में शामिल है। मेरे लौकिक पिता को इस ईश्वरीय परिवार का संदेश आसाम में मिला और उन्होंने वहां से ही हमें पत्र लिखना शुरू किया कि नारियां संस्था चलाती हैं, मुझे आने में अभी काफी दिन है, बहुत अच्छा ज्ञान है उनका, और आप माँ बेटी जाओ और वहां सुना करो। मैं बात कर रही हूँ 1960 की। उस जमाने में तो वाहन व्यवस्था इतनी सुलभ नहीं थी और केंद्र घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था, तो कभी ऐसा कदम नहीं उठा पाए जाने का। लेकिन लौकिक में माँ सोच रही थी कि अब जब ये छुट्टियों में घर आएंगे तो मैं उनसे पूछकर कोई ना कोई गुरु धारण कर लूंगी और गुरु तो अक्सर पुरुष ही होते हैं, उसके लिए तो पति की अनुमति बहुत जरूरी है। मेरी तो मेरे दोस्त से मुलाकातें चलती रहती थी, वो ऐसे कहता था मैं ऐसे कहती थी, और इतना होती थी ये क्यों रोती थी तो तुम मिलोगे तो कहा, ऐसा सा करने में तो गुम हो जाते हो। भगवान तुझे मैं खत लिखती अगर तेरा पता मालूम होता। मेरे पिता को तो सुनने के तुरंत बाद विश्वास हो गया था। अब उस दिन के इंतजार में थे कि वो कब मिनट आए और कब हमें इस मार्ग पर चलाए। तो मैं और मेरे लौकिक माता पिता पहले दिन छुट्टियों के बाद आने पर केंद्र पर गए तो ये दोस्त वहां सीढ़ियों में मेरे इंतजार में था, आ रही है। माता पिता ऊपर जाके क्लास में बैठ गए, किसने मुझे आगे जाने ही नहीं दिया। वो 5-7 मिनट के बाद लौट के फिर वापस आए कि मैं जाने से पहले कह रही थी आज मेरा लौकिक जन्मदिन है और आज जाऊंगी तो जब मेरे फ्रेंड्स लोग आएंगे और मैं घर में नहीं मिलूंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, कल जाएंगे। नहीं बेटा, आज चलो, जल्दी वापस आ जाएंगे। तो शरीर की उम्र बहुत कम थी लेकिन ऊपर वाले ने बुद्धि थोड़ी ज्यादा ही दे दी थी शायद। तो मेरा पिता इतने दिनों के बाद आया है, अब तक तो उसकी इंतजार करते रहते थे हम, और अब जब आ गया है और इतनी से बात कह रहा है चलो तो मैं ना बोल रही हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा है ना कि हम जल्दी आ जाएंगे, तो मुझे वो वहां से पकड़ के ऊपर लेके चले। और मैं जैसे ही जाके बैठी और सामने मम्मा बाबा को देखा तो मम्मा बाबा के दो चित्रों के बीच में कृष्ण का चित्र हुआ करता था और शिव बाबा लाल लाइट वाले बनाए हुए, ये वाले नहीं बनाए हुए, बरामदे में जो लाइट होती है उसको सेफ रखने के लिए कांच का कवर रहता है ना, उस कांच के कवर को ऑयल पेंट करके लाल शिव बाबा शिवलिंग की तरह सेंटरों पर बनाया जाता था और उससे लकड़ी की उस गिट्टी पर फिट करके अंदर बल्ब लगाया जाता था, वो शिवा का होता था। तो ये बाबा और मामा के बीच में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, एक ही आंख से मैं दोनों को भी अंदर बसा लू ऐसी कोशिश। और बैठने के तीसरे मिनट के बाद मैं ध्यान में चली गई, क्योंकि मुझे सजने संवरने का बहुत शौक था और नसीब से मुझे मासी और बुआ भी कोई नहीं है, मैं लौकिक में इकलौती रही, मुझे एक बड़े दो छोटे भाई है। आप सोचते होंगे कि हम यहाँ आपका परिचय जानने के लिए थोड़ी आए, लेकिन मेरे परिचय में तो कहानी है और कहानी भी रूहानी है। मुझे मम्मा ने एक अच्छा बॉक्स दिया और उसमें सारा श्रृंगार है और मम्मा बिल्कुल मेरे पास में बैठे हैं। मैं नहीं जानती इनको मम्मा कहा जाता है, इनको बाबा कहा जाता है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं जानती। ना मैंने कोई लिटरेचर पढ़ा था और ना मैंने उनका कोई फोटो देखा था, मैं तो अपने दोस्त को पहचानती थी बस। तो मम्मा पास में आके बैठे और बोले, बच्ची श्रृंगार का ही शौक है ना, तो तुम ये श्रृंगार करो। ये जो कानों में पहनते हैं ना, ये बुरा ना सुनने की कसम है, और ये जो हाथों में पहनते हैं ना, ये बुरा ना करने की कसम है, बंधन है। और ये जो गले में पहनते हैं ना, ये गले के नीचे कुछ भी ऐसा वैसा ना उतारने की कसम है। मैं सुन रही हूँ, आज मैं उसे शब्द दे पा रही हूँ, लेकिन जब मैं ध्यान में हूँ देर तक और मुझे लौट के घर वापस आना है, इसकी चिंता मेरे माता पिता को है। तो मेरे सिर पर हाथ फिरा के मुझे ध्यान से हटाया गया और तुरंत ये पूछा गया कि तुम क्या देख के इतनी प्रसन्न हो रही थी। तो मैं उस नए वातावरण में और संकोच वाली वृत्ति होने के कारण मैं कुछ बात नहीं कर पाई, बोल नहीं पाई, लेकिन मेरा मन बड़ा आनंदित हुआ। तो वो जो मिलने आता था, ये उसी का घर है, इतनी लंबी कल्पनाएं भी शायद मैंने नहीं की थी, क्योंकि मुझे रेगुलर स्टडी मिल गई थी। तो मैं और मेरे माता पिता, मैं साइकिल के हैंडल पर, मेरी माँ के एरियल पर, और मेरा पिता वो 10 किलोमीटर साइकिल चला के इतनी सवारियां घसीट के लेके जाके फिर लेके आके। तो ये 31 मई 1950 मेरा जन्म पूना में हुआ और वो 60 का दिन था, 1960 का दिन, जिस दिन मैंने पिता से ना आने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे चलो बोला था। तो जिद कितना नुकसान कर सकती है इसका आपने अंदाजा लगाया। आज मेरे लाइफ का वो रिकॉर्ड बन गया कि मैं लौकिक जन्मदिन के दिन ही अलौकिक जन्म भी प्राप्त की। ठहरो, इतना ही नहीं, थोड़ा आगे है। फिर 7 दिन के कोर्स के बाद पिता ने कहा कि इतना उत्तम ज्ञान हम जिस जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास के लोगों को कैसे प्राप्त हुआ, हम तो आ जाते हैं लेकिन वो लोग तो इतना दूर नहीं आ पाएंगे। तो ये वो जमाना था जिस समय लोग ब्रह्मा कुमारियों की नजर में नजर भी मिला के देखना नहीं चाहते थे, कहीं जादू ना लग जाए, और विद्यालय अपने ही तरीके से, सुंदर तरीके से बदनाम था, नाम था बदनाम क्यों नहीं था। तो उस समय पिता ने जब बहन जी से ये पूछा और उनको लगा कि ऐसा परिवार घर में आमंत्रण देता है आने के लिए, तो बहुत खुशी की बात है, बुला रहे कौन थे। बहन जी ने तुरंत उस बात को स्वीकार कर लिया और ये तय हो गया कि अगले 7वें दिन के बाद, मतलब 8वें दिन, एक माता के साथ एक बहन जी आएंगे, घर में सत्संग होगा और सबको भी लाभ मिलेगा। सत्संग शुरू हो गया, पिताजी को 2 महीने की छुट्टियां पूरी हो गई, वो वापिस चले गए अपनी ड्यूटी पर। हमारा ये पढ़ाई का क्रम चलता रहने लगा, क्योंकि उस तरफ सर्दियों में बहुत होती है। तो 5-6 महीने के बाद जब सर्दियां आ गई, तो घर पर ही आने वालों की संख्या जब कम कम होने लगी तो तब से मुझे ड्यूटी दी गई जब मैं सिक्स्थ में पढ़ रही थी कि मैं मुरली पढ़ के सुनाया करूं, क्योंकि ये लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस उम्र से मुरली पढ़ते पढ़ते आज ये उम्र हुई है, मतलब संगम की 42 दिवालियां मना चुकी हूँ। मेरा कर्म क्षेत्र आबू रहा, दसवीं तक मैं पढ़ाई पढ़ती रही बेमन से, क्योंकि मुझे तो मिल गए ना दोस्त, उससे बातों से फुर्सत नहीं रहती थी और मुझे ज्यादा से ज्यादा केंद्र का लाभ लेने का मौका लौकिक से मिलना करता था। मैं दसवीं की परीक्षा देकर लौकिक माता पिता के साथ 1965 27 में आबू आई। मैंने ध्यान में आबू पहले से ही पूरा देख लिया था। मुझे आने के बाद कोई जिज्ञासा नहीं रही कि मैं वहां जाऊं फिर वो देखूं, फिर यहाँ आऊं फिर ये देखूं। वो मैंने सारा देखा हुआ था। 27 तारीख को मधुबन आने के बाद मुझे कुछ प्लान प्रोग्राम मेरे लौकिक माता पिता का मालूम नहीं, माँ के दिल में भी नहीं था, लेकिन पिता तो ठान के ही आए थे। मुझे जब कोई बचपन में पूछा करता था कि पढ़ने के बाद क्या बनूंगी, तो डॉक्टर बनूंगी, पैसा कमाने के लिए नहीं, सेवा के उद्देश्य से। और मन में वही पक्का था कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। जब घर में कभी चर्चा होती थी कि तुम आश्रम में रहोगी, तो माँ बाप के सामने जवाब नहीं देना, ये तो बचपन से सिखाया हुआ था, उनके सामने ना नहीं बोलती थी। मन में सोचती थी मुझे जाके आश्रम में रहने की क्या जरूरत है, आश्रम में तो जाके वो बहने रहती है ना जिनके पति पिता को तो मारते हैं, घर में रहने नहीं देते, घर से आने नहीं देते, मारपीट पड़ती है, वो जाके आश्रमों में रहेंगे, मेरा तो घर आबाद है ना, और मुझे तो माता पिता की कोई मना नहीं है, तो मुझे आश्रम में जाके रहने की क्या जरूरत है। डॉक्टर बनने के साथ साथ भी ये सेवा हो सकती है ना, ये अपने मन में मैंने पक्का कर रखा था। मगर ऊपर वाला तो आपको मालूम है कि वो अंतर्यामी है। मैं जैसे ही इन लोग के साथ मधुबन आई, इन्होंने अंदर अंदर मेरठ के मेरे अलौकिक माँ कमल सुंदरी बहन, देवता बहन, जो आज भी है करीब 93-94 ईयर उनका एज है, और यज्ञ में वो अच्छे योगियों के नाम से प्रसिद्ध बहन है, तो ये भी यहाँ थे। इन्होंने अंदर अंदर प्लान बनाया। तो लौकिक पिता ने कहा कि 31 मई को ज्ञान में आई, 31 मई को जन्म मिला है, तो 31 मई के दिन ही इसका हाथ मम्मा बाबा के हाथों में देना है। नीचे हिस्ट्री हॉल में मम्मा वाणी चलाकर और बाबा भी वाणी चलाकर जब सुबह का क्लास 7:30 बजे पूरा हुआ, तो बिल्कुल ऑफिस के दरवाजे तक आके पहुंचे तो इन्होंने उनको वहां ही रोक लिया। ये बात पहले से हो चुकी होगी, तो रोकने के बाद मम्मा का हाथ नीचे है, बाबा का हाथ ऊपर है और बीच में मेरा हाथ है, और लौकिक पिता कह रहे हैं कि आज से ये आपकी है। मेरे लिए उस समय ये बहुत गुहे पहेली थी, मैं इसका अर्थ नहीं जानती थी। तो बाबा ने प्रोग्राम दे दिया कि मैं नाश्ते के लिए मधुबन से मेरे लिए एक जोड़ी कपड़ा पहुंच गया कमरे में, कि बाबा का दिया हुआ ड्रेस पहन के मैं बाबा के कमरे में बाबा के साथ नाश्ता करने के लिए पहुंच जाऊं। तो जीवन में पहली बार मुझे वो सूती धोती लपेटनी थी उस उम्र में, उसको स्टार्च वगैरह कुछ नहीं था, तो मुझे जैसा लपेटना आता था वैसा मैंने लपेट लिया उसको, और मुश्किल से चलते 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 आके बाबा के रूम तक पहुंची। लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाबा के साथ नाश्ता हुआ, फिर दोपहर का भोजन भी तय हो गया। शाम की मुलाकात, उसमें कुछ कुछ ज्वेलरी पहनाई जा रही है, तिलक लगाया जा रहा है, और ये तय हो गया कि मुझे कल या परसों अमृतसर दादी चंद्रमणि के साथ अब भेज दिया जाएगा। हाँ बाबा, जब आप मुझे नया जन्म ही दे रहे हैं तो प्लीज ये नाम भी बदली कर दो। नहीं 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 बच्ची, ये नाम बहुत अच्छा है। अगर मैंने तुम्हारा ये नाम बदली कर दिया और तुम अगर कोई चंचल ख्यालातों में मुझे छोड़ के चली गई तो तुम्हें बहुत पाप लगेगा। और दूसरी बात कि कोई करोड़पति भी रहने दो, अगर उसको संतुष्टि से जीना नहीं आता तो भिखारी है। तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब कि लौकिक पिता, अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता ने ये जो नाम संतोष अंडरलाइन कर दिया। और आजकल तो आप जानते हैं कि जय जय संतोषी माता, जय जय मां, तो ये मेरा अच्छा मुकद्दर। मुझे लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक सबने इस नाम से स्वीकार कर लिया। और मैं मधुबन में बाबा के साथ शाम को 7:30 बजे भोजन से पहले, रात्रि के भोजन से पहले, मैं, मम्मा, बाबा और मेरठ के बहन जी और मेरे लौकिक माता पिता, हम सब बाहर गेट से बाहर निकले और पहली जो ढलान आती है वहां तक बाबा का जंक्शन, वहां तक बाबा रुक जाते थे और फिर वहां से लौट के वापिस आते थे। आने के बाद अब रात का भोजन खाना है, भोजन में पापड़ है और पापड़ आवाज करता है, और खाना खाते समय इतनी गहरी रूहानियत थी, इतना गहरा शांति का वातावरण था कि वो पापड़ खाना मेरे जान की मुसीबत हो गया मेरे लिए। उसको ऐसा करती हूँ तो भी नहीं होता, फिर कैसा करूंगी। बाबा बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं, शरीर को खिला रही है या आत्मा को खिला रही है, खाना खाना पड़ता है इसलिए खा रही है या टेस्ट लेने के लिए खा रही है, न मालूम बाबा की ये नूरानी निगाहें क्या क्या परीक्षा लिया करती थी। तो उस उम्र में तो मुझे इतना लंबा सोचने को भी सुध-बुध नहीं थी, लेकिन आज भी वो अलौकिक दिन याद है कि मैं जब खाना खाने बैठी तो उतना भी जो आवाज था ना, वो मेरे लिए उस वातावरण में बहुत कठिनाई पूर्ण हो गया सिग्नल, आवाज की दुनिया से दूर जाने के लिए। चलिए, आपने कैसेट में बजता हुआ फिल्मी गीत सुना है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आपने गीत सुना है, मैंने उसका इस जीवन में प्रैक्टिकली माता पिता बंधु सखा प्रिंसिपल ये सारे रूप इसी शरीर में अनुभव पाए हैं। बाबा देखने के तुरंत बाद बोलते हैं कि तुम प्रेम की बच्ची तो नहीं दिखती, मम्मा की बच्ची दिखती हो, क्योंकि हमारी माँ जरा दुबली पतली थी। बाबा ने एक बार कहा होगा, मैंने जैवी परिवार में हने इतने बार भाई बहनों से सुना है कि आप मम्मा से मिलती जुलती है, तो मुझे इस बात का गर्व है कि 84वें जन्म में मैं मम्मा से मिलती जुलती हूँ, तो आप किसी न किसी तरीके से भी तोड़ के मरोड़ के ठोक के कैसा भी मुझे मम्मा के जैसा बना के ही छोड़ोगे, ये दैव परिवार का उत्तम सहयोग। मधुमन में मुरली टाइप करती थी, बर्तन संभालती थी। बचपन तो था, सीधा स्टेज मिलने से तो रहा। मधुबन के गिनती के 18-20 लोगों में एक बाबा और कितने। मम्मा तो 24 जून को विश्रामी हो गए, लेकिन क्योंकि मुझे चंडीगढ़ जाने का फाइनल न्योता मिल चुका था और बाबा के कमरे से बाहर निकलते ही मगरमच्छ माया का रूप लेके इतने बेहतर, इतने सुंदर, चमकीले रूप में उपस्थित था कि संतोष अमृतसर मत जाना, तुम तो बहुत नाजुक परिवार में नाजुकता से पली हुई हो, वहां तुम बिल्कुल टिक नहीं सकती, चल नहीं सकती, जाना मत। सुबह से लेकर के मम्मा बाबा ने और लौकिक परिवार ने इस दिल दिमाग पर जो मेहनत की थी, वो माया ने कास्टिक सोडा डालकर के 1.5 मिनट में धो दी। और मैं केकई से भी बुरी तरीके से कमरे में जाकर के रोना शुरू की। पूछने वाले थक गए कि आखिर मुझे हुआ क्या है, तो मैंने नहीं बताया कि मुझे क्या हुआ है, क्योंकि वो भी ऊपर से चैलेंज था, बोलना मत किसी को, तुम्हें जाना भी नहीं है और बोलना भी नहीं है। लेकिन वो माया इतनी सुंदर थी कि प्रभु का रूप तो कभी दिखा ही नहीं उसमें। मैं रात को रोते 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 सो गई और सुबह एक खबर बाबा तक पहुंच गई कि ना मालूम क्यों ये सारी रात रोती ही रही। अब मेरी हालत ये कि सुपारी काटने वाली मशीन के बीच में मैं अटक गई, लटक गई। अब कैसे, माँ बाप को ना भी नहीं बोल सकती, तो जो कहा है ना मुझे वो भी सही दिखता है कुछ कुछ। तो ये फाइनल हुआ कि ठीक है, मैं अब कुछ दिन तक जाऊंगी वापस मेरठ। देवतागंज के पास मैं अच्छा योग करना सीखूंगी और फिर जब मैं कहूंगी कि बाबा मुझे आप बुला लो, तो बाबा मुझे बुला लेंगे। हाँ, शुक्र है प्राण में प्राण आए, वो भी शुक्रवार का दिन तो नहीं था, लेकिन शुक्र हुआ। तो मैं अपने लौकिक माँ बाप के साथ वापिस मेरठ गई और मैं केंद्र पर रहने लगी। केंद्र पर रहने के बाद ये शर्त हुई कि मैं ये ऐसी प्लेन साड़ी नहीं पहनूंगी, मुझे कोई ऐसा कुछ कुछ डिजाइन वाला। ये क्या, ये उम्र है क्या 15 साल की ऐसी साड़ियां पहनने के लिए, और ये फुल ब्लाउज नहीं पहनूंगी मैं। ठीक है, तुमको जो ठीक लगता है वैसे ही पहनू। तो मुझे जाली जाली वाली डिजाइन वाली ये मिल गई धोती और ये हाफ स्लीव्स का। कुछ दिनों के बाद माता लोग और मेरे में क्या फर्क है, जैसे घर से माताएं आती हैं उनको मैं मुरली पढ़ के सुनाती हूँ, वो भी इतना ही पहनती है इतना, और मैं भी इतना ही पहनती हूँ, तो मैं तो बाबा के पास अर्पण होके आई हूँ ना, तो इनमें और मेरे में क्या फर्क है। तो दीदी एक बात है, कहूँ? बोलो क्या है। एक पूरी बांग का ब्लाउज चाहती हूँ। क्यों, तुमको तो पहना नहीं है ना पूरी बांग वाला। मुझे 10 टुकड़े जोड़ के उसमें कोई पीला था, कोई नीला था और कोई सफेद था, लेकिन वो था कॉटन ही। तो मुझे 10 टुकड़े जोड़ के जो पहला ब्लाउज पहनने को मिला, उस दिन मेरा मन जो हर्षाया, मतलब उनसे मैं सुपीरियर हूँ। और टुकड़े हैं तो क्या हुआ, वो तो ऐसा करके रहते हैं ना अपन हमेशा, वो तो क्या देख। फिर सुपारी के बीच, सुपारी की मशीन में, खैर दिसंबर में लौकिक भाई की शादी हुई और घर में बहू आ गई, तो माँ को कान में एक फूंक लगाई, मुझे मधुबन जाना है। हाँ, तो इसका बिल कौन बनाएगा, मेरे लिए थोड़ी आई है। मैं उससे क्या बातें करूंगी, उसका मन मेरे साथ कैसे बहलेगा। तुम्हें देखने वाले कोई ना कोई आ गए, संभालने वाले आ गए, और वो मेरे लिए नहीं आई। और पहले तो मुझे घर में एक अलग नारी को देखकर अंदर में ईर्ष्या हुई कि ये कौन आई है बीच में। मैं और मेरी माँ दो ही जा सकते थे, अब तो भाई इसी में बिजी रहने लगा, अब तो ये घर में रह के कुछ मजा नहीं है। तो मेरे लिए नहीं आई, मुझे तो मधुबन जाना है। उनके पास कोई प्लान नहीं था भेजने का। तुम अगर खुशी से भेजती हो तो भी ठीक है, क्योंकि बाप का सपोर्ट था ना पीछे से, तो ये कुछ कर तो सकती नहीं। तो तुम अगर खुशी से भेजती हो तो भी ठीक है, और अगर खुशी से नहीं भेजती तो भी ठीक है, मगर अब जो मधुबन में पार्टी जा रही है, मुझे मधुबन जाना है। और मैं जबरदस्ती भी आ गई और एक पेंसिल से लिख करके पोस्ट कार्ड पिता को भेज दिया कि मैं पार्टी के साथ आबू जा रही हूँ। तो उनका तो बहुत खुशी हुई। ये माता मोहों के वश परेशान कि इतने लाडों में पाला है, फिर यज्ञ में कैसा रहेगी इतने बड़े यज्ञ में। तो मैंने जो सफेद झूठ बोलना शुरू किया, माँ के साथ, उसकी तो मुझे ऊपर वाले से भी परमिशन थी। तो उसको ये बताया गया कि तुम मेरे को क्या लाड करती थी, यह सबको बाजू को रखकर तो मेरे को अकेले को उतना ज्यादा खिलाया पिलाया पहनाया। और इसमें कोई शक भी नहीं था, मुझे विश्व अर्थन राजा को सौंप दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि इसको सिंधी सिखाई जाए और इसको हिंदी टाइप सिखाया जाए, ताकि ये जो उंगलियां घसीट के स्टेंसिल कट किए जाते हैं और ज्यादा मुरलियों की कॉपियां नहीं निकल पाती, ये मुरली टाइप करेगी। हे परमेश्वर, ये कीड़े मकोड़े जैसी भाषा सीखना मेरे को मजबूरी क्यों लगाया सिंधी भाषा। जब यीशु दादी को हिंदी लिखना आता है तो वो क्या हिंदी में नोट्स नहीं ले लेती? रात की मुरली में बाबा के सामने बैठी हूँ। बाप दादा जानते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं, वो कई हुनर इसलिए नहीं सीखते कि कहीं जीवन भर उन्हीं को न करना पड़े। पसीना आ गया, भगवान है ना, तो इसको मेरे अंदर की बात पता पड़ गई है। और संकल्प भी यही था कि अगर सीख गई ना तो मुझे लोग बाहर सेंटर पर नहीं भेजेंगे। हालांकि वो मुझे कहा नहीं गया था, लेकिन अच्छा लगा कि मैं उसमें जागती बैठ करके मुरली सुन रही थी। तो फिर किसी को मारा गया निशाने में, हम भी बीच में घायल हो गए। और जब सारे के सारे लोग सोए रहते थे तब हम 3:30 बजे उठ के 4:15 बजे 0 वाट के बल्ब में अंधेरा सन्नाटा और चीतों की वो सब आवाज बाहर थी, तो 0 वाट के बल्ब में हम बाहर बैठ करके वो कीड़े मकोड़े प्रैक्टिस। तो जिस दिन पहली बार हमने एक उंगली से वो जो टाइप सीखा था विदाउट मेथड है ना, गुड मेथड, तो एक उंगली से वो जो टाइप सीखा था, उंगली का शेप भी बदली हो गया सबसे। तो उस दिन बाबा ने खुशी खुशी में हमको अपने साथ बुला के बिठा के अपने टेबल पर भोजन खिलाया। क्या क्या सुनाऊ आपको, क्या क्या रखू, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, ये जो सुनाया है ना ये तो शुरू भी नहीं किया है। बड़ी मुश्किल है, घड़ी दौड़ती रहती है। तो सबका भोजन होने के बाद बाबा भोजन करते थे, और बाबा का भोजन होने के बाद मुझे भोजन नसीब होता था। मतलब वो सबका मात पिता होगा लेकिन उसकी माँ मैं, क्योंकि उसके खाने के बाद मुझे मिलता था। बच्ची इधर आ, बच्ची आई पास में। इतना सुंदर वो भी एक समा था, कोई व्यवस्थाएं नहीं कुछ नहीं, लोहे की अंगीठी लेके ये नीचे बैठे वाले जो पुराने मधुबन साथी भाई लोग है ना मेरे, लोग अंदर में गदगद हो रहे हैं या हंस रहे हैं मालूम नहीं मुझे, कुछ कर तो जरूर रहे होंगे। तो लोहे की अंगीठी लेके इतना बड़ा चिमटा लेके वो भोले शंकर वाला वो अंगीठी उठा के वो किचन में जाके वो बड़े वाले चिमटे से वो जो मोटा मोटा लकड़ी चूल्हे में जलता रहता है उसने जैसा फोड़ फोड़ के उसके कोयले उठा उठा के उसमें डाल के लाल एकदम हो जाने का चेहरा, और फिर एक हाथ से पंखा करते रहने का और दूसरे हाथ से सब्जी खिलाते रहने का और बाबा के लिए भोजन बनाने का। बाबा तो भोजन जो सबके लिए बनता है वही खाया करते थे, लेकिन बहुत जिद करके बहुत जरूरत समझने पर बाबा का किचन, बाबा के रूम के बाहर जहां चप्पल निकालते हैं वहां बना। बाबा को नाम याद से रहते थे, बाबा निशानियों से बुलाते थे। तो जो बहन ने भोजन मंगाना शुरू किया वो सिंगापुर की सावित्री बहन थी, 2 महीने पहले ही उन्होंने शुरू की थी सारी व्यवस्थाएं। बड़ी सीधी साधारण चीज है, किसी की झोपड़ी में भी उससे ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं रहती होंगी। तो टाइप वाली बच्चे को बुलाओ, क्योंकि सिंगापुर में आकर के सेवा करो, ऐसा उनके बेटे बहू का निमंत्रण आया। तो अंधा क्या चाहे, है ना, 2 आंखें, तो विदेश में निमंत्रण कहाँ और सेवा कहाँ। तो जब उनको विदेश में सेवा का निमंत्रण मिला तो उनको भेजना है, भेजना है तो ये सीट कौन भरना है, सीट कौन भरना है। तो टाइप वाली बच्ची को बुलाओ, आई टाइप वाली बच्ची कठपुतली जाओ, तुम बाबा को भोजन बना के खिलाओगी। बाबा ये पंजाबी तरीके का बनाना आता है मेरे को, मुझे ना सिंधी तरीके का बनाना नहीं आता, पर अगर कुछ सिखाएगा तो मैं बनूंगी। आप सिर्फ श्रीमत का पालन करते हो, खाली इतना ही करो बस, आसान भी है ऐसा करना। ये ऐसा करना कितना मुश्किल है वो आपको समझ में आया ना, गर्दन झटका खा सकती है। तो श्रीमत बोलने से ये होता है, मन मत बोले तो ये होता है, ये जो ऐसा हुआ ना ऐसा होता है। इसलिए काहे को ज्यादा तकलीफ उठाते आप लोग कभी कभी ऐसा ऐसा करने में, आप भी ऐसा ऐसा करते जा खाली। तो मैंने बाबा को ऐसा ऐसा किया, बाबा के कमरे के बिल्कुल बाहर किचन, अब बर्तन में चम्मच हिलेगा तो आला जाएगा, लेकिन बिल्कुल सूक्ष्म हुआ तक आवाज नहीं है। आज की दुनिया से दूर जाने का तो उसने मुझे ऐसा शौक लगा दिया है कि मैं सब कुछ सहन कर लेती हूँ, लेकिन ये जो आवाज है ना, ये बोलने का खाने का, तो मेरे लिए बहुत बड़ी परीक्षा बन जाता है। तो मैं सेंटर पर बहनों से कहती हूँ प्लेटफॉर्म पर ना एक कपड़ा बिछा दो बड़ा सा, ताकि बर्तन उठाने का, रखने का, बेलना पटकने का, चिमटा पटकने का आवाज नहीं होना चाहिए। ये आवाज की प्रैक्टिस उसने मुझे वहां किचन में डाली। तो गत्ते से वो कच्चे कोयले का धुआं निकालने का, वो राख खोलने का, फिर वो बनाते रहने का। बाबा के साथ हमेशा कोई ना कोई मेहमान टेबल पर होते थे। मेरा मुकद्दर लोग गुरुओं के, मतलब मनुष्यों के चरण धोकर के पीने में अपने आप को धन्य समझते हैं। वो बुढ़ा बुढ़ा बाबा, ये लंबी लंबी पतली पतली मक्खन जैसी पतली नाजुक उंगलियां, और वो ऐसा ऐसा करके जब, तो खाते खाते मेरा जब नंबर आएगा, और जो भी खिलाने वाले होंगे, यीशु दादी, लक्ष्मी दादी, है ना, इन सबको भी बाबा गिट्टी खिलाएंगे, तो अगर मैं बीच में खुद कुछ परोसने के लिए आ गई तो मुझे बीच में मिल जाएगा। आखिर में आखिर लास्ट में भी मुझे बाबा खाते खाते तो मुझे खिलाएंगे। ये सेहत ऐसे नहीं बनी सिर्फ दिन में 4 बार टोली खिलाता था, वो मुरली टाइप करने के लिए बिजी रहती थी, एक ही उंगली से करती थी, ज्यादा टाइम लगता था। पहले वो कीड़े मकोड़े की भाषा पढ़ने का है, फिर उसके बाद लिखने का है, क्या क्या सुनाऊं। अच्छा एंड पर आती हूँ। अगर तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची संतुष्ट रहती हो? तो मैं पिछले 26 वर्षों से कर्नाटक में रहती हूँ, बीदर, ये हैदराबाद और सोलापुर के बीच में आता है, आंध्र महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर। पहले से थोड़ा सा सेवा में भाषा के कारण भी, आर्थिक दृष्टिकोण से, और कुछ उस समय के फैले हुए पर्वे, तो तो वो शहर में कोई भी रहना ऑफिसर्स लोग भी पसंद नहीं करते थे, रिश्वत दे के भी वहां से ट्रांसफर करा के जाने के प्रयत्न में रहते थे। तो मैं बाबा से बोली, कभी कैसे कभी कैसे। ओम शांति भवन की स्टेज पर बाबा हैं और मैं और बाबा सिर्फ दो ही हैं। तो मैंने कहा कभी कैसे कभी कैसे। तो नहीं बच्ची, तुम तो संतुष्ट मणि हो ना, और मणि तो कभी भी पूरी ही होती है। बाबा ने ये सिर्फ मुख से नहीं कहा, मुझे विचित्र सा कुछ टॉनिक पिला ही दिया संतुष्टता वाला। अब मुझे आखिर में आपसे ये कहना है कि मैंने तो इन चमड़े की आंखों से लाल बाबा सफेद बाबा दोनों देखे हैं, और मुझे लोगों को ये कहने में बहुत आनंद आता है कि वो कौन है, क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है। बहुत दिल से कहती हूँ, क्योंकि भगवान तुझे में खत लिखती, अगर तेरा पता मालूम होता तो मुझे पता बताने में जो आनंद आता है उसकी तो आप कोई कीमत नहीं निकाल सकते, अंदाज नहीं निकाल सकते। मैं सिर्फ नाम से ही संतोष नहीं हूँ, मैं तन और मन दोनों से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने ये संकल्प वर्षों से कर रखा है। जैसा बाबा के लिए हर कोई कहता है कि बाबा मेरा है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जो भी बाबा के रूम से निकल के बाहर आते थे वो ये कहते थे कि बाबा जितना मुझे प्यार करते हैं इतना किसी को भी नहीं करते होंगे। लेकिन ये सर्टिफिकेट हमें मिलने वाले नहीं कहते हैं, हम जिनके भी संपर्क में आते हैं है ना, उनसे हमको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता। हमें तो ये मिलता है कि इनका इनसे खास है, इनका इनसे आम है, और इनका इनसे है ही नहीं। लेकिन जिस मातपिता को हम फॉलो करने का संकल्प लेके इस पवित्र सभा में रोज रोज केंद्रों पर या यहाँ उपस्थित होते हैं, अगर हमने सर्व संतुष्टि का सर्टिफिकेट नहीं लिया तो ब्राह्मण बन के कुछ नहीं किया। आप ही ने बाबा की साकार वाणियों में भी सुना है कि कम नसीब देखना हो तो मेरे पास और खुश नसीब देखना हो तो मेरे पास। आपका नसीब कैसा है वो आपको अपना नसीब मालूम, लेकिन मुझे मेरे नसीब पर गर्व तो आज नहीं वर्षों पहले से है। अगर मैंने खुद को ही मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं किया तो मैं लोगों के सामने ईश्वर को कैसे प्रत्यक्ष करूंगी। मैं आज से कुछ समय पहले किसी शहर में किराए पर मकान लेने गई थी सेवा के लिए, तो उन्होंने मुझसे किराया पूछा 2500 रुपया महीने का। मैंने कहा मैं मंदिर वाली संतोषी माता आपसे बात कर रही हूँ, आपको शहर में 3 थिएटर देकर करोड़ों की दौलत देने के बाद मैं शिव की शक्ति उसकी सेवा के लिए आपसे 4 कमरों का सीमेंट की दीवारों का एक घर चाहती हूँ, और आप मुझसे किराया पूछते, आपको लेके कहाँ रखेंगे। वो व्यक्ति सोच में पड़ गया। पहले तो उसने तुरंत पांव को हाथ लगाया, मैंने कभी किया क्योंकि हूं तो ना मैं किसी खास की दोस्त हूँ और मुझे जाना भी स्वर्गीय दुनिया में ही है, पर जाऊंगी। वो कहता है मैं 2 दिन के बाद आपको जवाब दूंगा, और उसने 2 दिन के बाद जो स्टेज पर आकर सभा के सामने जवाब दिया वो ये कि माता संतोषी ने मेरे मकान में जो सेवा चलाने के लिए घर पसंद किया है, मैं उसका जीवन भर कभी किराया नहीं लूंगा। 10 छूट चुकी है, इंजन उस तरफ है, मैं मधुबन से जा रही हूँ, पार्टी टोटल नीचे है, हम पीछे से दौड़े आ रहे हैं, हमारी बस ने हमको लेट पहुंचाया, हमको चित्तौड़गढ़ से ट्रेन कैच करना था, नांदेड़ साइड जाना था, तो एक भाई जो पहुंच चुका था ट्रेन में, उन्होंने चेन खेचा। चेन खेचने के बाद चप्पल मेरे हाथ में, मैं दौड़ रही हूँ बाबा ये तू मेरे को भी संभाल, अपने बच्चों को भी संभाल, और आज परीक्षा है देखो। अब भाई बहन लोग पता नहीं मुझे क्या बोलेंगे, क्योंकि डिसीजन तो मेरा ही था। तो मैं जैसे ही डब्बे के पास पहुंचती हूँ, टीटी दरवाजे में खड़े है, हटो पहले संतोषी माता को चढ़ने दो और फिर माता के बच्चों को चढ़ने दो, बाद में आपसे टिकट की बातें करेंगे। टीटी हट गया। मैं वो जो हाँफ रही थी, दौड़ती दौड़ती आई थी, चप्पल मेरे हाथ में था, एक ऊपर गिर गया, नीचे गिर गया, नीचे वाला चप्पल टीटी ने उठा के ऊपर रखा, मुझे खिड़की के पास ले जाके हवा दिलाने लगाया, फिर पानी पिलाने लगाया। माता आप जरा नॉर्मल हो जाओ, फिर बाद में मैं आपसे आके टिकट की बात कर लेता हूँ। मैं बिना रिजर्वेशन के संतोषी माता होने की हैसियत से 16 भाईजनों के साथ रिजर्वेशन के डब्बे में अपने मुकाम तक जाके पहुंची। और जब मैं उस टीटी भाई को प्रसाद देने गई, मधुबन की कोई सौगात देने गई, तो माता तर्क मत खोलना, उसे समझा ये गवर्नमेंट के नोट देने आई है। तो मैंने कहा नहीं भाई जी प्रसाद, हाँ प्रसाद तो मैं जरूर कबूल करूंगा। माता मैं धन्य हूँ कि मुझे जीवन में ये सेवा करने का मौका मिला। बस में मुझे भरा हुआ सिलेंडर लेकर एक शहर से दूसरे शहर में जाना है। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट बस में तो ये छूट नहीं होती। तो ड्राइवर बदली हो गया अचानक कुछ दिन, आपको पता है आप किसका नाम बोल रहे हो? मैं मंदिर वाली संतोषी माता हूँ और ये आशीर्वाद की कुछ भी नहीं होगा, और कुछ हुआ भी तो मैं जिम्मेवार। उसको क्या दिखता था मालूम नहीं, उसने तुरंत हाँ बोल दिया। 14 साल तक मैंने गवर्नमेंट बस में भरा हुआ सिलेंडर, क्योंकि वहां पर एजेंसी नहीं थी, इस शहर से उस शहर में ससम्मान पहुंचाया। संतोषी माता, मुझे मेरा सम्मान खुद को करना आता है, इसलिए मेरे में लोगों को शिव दिखता है, परमेश्वर दिखता है। तो जब तक मैं मुझे सम्मान देना नहीं जानती, पहले मैं मेरी ही क्या करना नहीं जानती, तो मेरे माध्यम से ऊपर वाले की जय कैसे होगी? हमें खुद से ही राजी रह के जीना नहीं आता। हम अगर समयबद्ध नियमों में नहीं चलते, समयबद्ध दिनचर्या में नहीं रहते, और अंदर ही अंदर बाद में खुद को कसकसाते रहना पड़ता है, नाराजगी अपने आप से होती रहती है और उतारते कभी कभी किसी और पर है, इसको कहते हैं गिरे गधे पर और गुस्सा कुम्हार पर। तो जब हम खुद से ही खुद खुश रहना नहीं जानते, तो दूसरों को खुशियां कैसे बांटेंगे? और जो बांटेंगे नहीं तो हमारे हिस्से में और जमा कैसे होगा? इसलिए मैंने खुल्लम खुल्ला अनाउंस किया है कि मुझे जीवन में न किसी से नाराज होना है और न किसी को नाराज करना है। क्या मैं ये संकल्प ले लूं, विश्वास कर लूं कि घंटा भर समय आपने मुझे दिया, तो उठते उठते आपने कम से कम इन रत्नों में से एक ये रत्न अपने साथ लिया कि आप लाइफ में हम कभी किसी से नाराज होंगे और न किसी को नाराज होने देंगे। आपको हिंदी समझ में आती है ना? सबको आती है ना हिंदी? तो आपने संकल्प ले लिया है ना? संतुष्टता अपने जीवन जी के दिखाना है, हर हाल में संतुष्ट, और कम से कम रोज दिन में 51 बार ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना है कि तूने करोड़ों में से भी मुझे जितना बेहतर जीवन दिया है और जैसा मुझे सुखी रखा है, जैसा मुझे खुश रखा है, ऐसा तो सबको रखना। तब है आपकी और हमारी आज की मुलाकात का कोई फायदा, क्योंकि मुझे वो बेहद का पिता मिला है और मैंने भी खुद को जगत माता के रूप से बहुत बचपन से लोगों से सुनती आ रही हूँ कि बहन जी आपकी उम्र छोटी है लेकिन आपसे जो पालना मिलती है ना वो माँ के समान है। तो ये माँ 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 इस बात ने मुझे एक तो क्षमा मांगने में और क्षमा देने में बहुत सहयोग दिया है। मैं तो माँ हूं ना, बच्चों में ज्यादा से ज्यादा कितनी शक्ति रहती है, बच्चे हैं ना, हो गया कर बैठे कोई बात नहीं। फिर मैं सिर्फ खूबसूरती को चाहने वाली और खूबसूरती को प्यार करने वाली, इसलिए शायद मुझे कृष्ण ज्यादा सुंदर और पसंद आता था। अब मुझे खूबसूरती और बदसूरती से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मुझे योग लगाना बहुत आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि मैं किसी की भी नहीं हूं और कोई मेरा नहीं है, और इससे भी बड़ी बात कि सारे मेरे अपने हैं और मैं सबकी हूं। इसलिए मेरे बुलाने से पहले वो मेरे पास आ जाता है। आप जब उसे बाबा कहे तो आपका बाबा शब्द पूरा होने से पहले वो आपसे पूछना चाहिए कि बोलो बच्चे। और अगर ऐसा होता है तो मेरी याद की तार उसकी तार के साथ जुटती है, पर अगर मैं ही कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ सामने से कुछ जवाब ही नहीं मिलता तो इसका मतलब कि वो नाराज है। और आप महसूस करते हैं कि बाबा का चित्र सिर्फ चित्र है ना, जो कुछ पैसों में मिल जाता है, वो चित्र हुआ थर्मामीटर है। अगर आप राजी रहे और आपने दिन भर राजी रखा तो आप घंटों तक भी निगाहों में निगाहें मिला सकते हैं। और अगर कोई ना कोई सूक्ष्म भूल हुई है तो आप तीसरे सेकंड भी लगातार बाबा की निगाहों में निगाहें नहीं मिला सकते। और बाबा ने तो कहा है कि आपको नजरों से निहाल करना है। बच्चों अंतिम सेवा आपकी नजरों से निहाल करने की सेवा है। तो मेरी ये नजरें अगर चित्र की नजरों से नहीं मिल पाती तो मैं उन्हें विचित्रता कैसे बना सकूंगी। और वो इसलिए नहीं मिल पाती कि हमें रीस करने की आदत है, और बाबा ने कहा रीस नहीं करनी है, उन्होंने कहा नहीं करनी है, हम करते हैं। तो फिर रेस कैसे करेंगे, दौड़ेंगे कैसे। ऐसे कुछ छोटे छोटे से मुद्दे मैं अपने जीवन में जीने में लेकर प्रयासरत हूँ। बस सारी बातों का सार इतना ही है कि मुझे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का एहसास सदा रहता है, रखना ही है, मेरा पुरुषार्थ इसी पर जारी है। और कोई भी घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो सकती है, इसके लिए मेरी अवस्था हमेशा अच्छी एक रस रहनी चाहिए, क्योंकि जिस समय मेरी अवस्था अच्छी है उस समय मेरा अंतिम श्वास नहीं निकला। लेकिन जिस समय मेरी अवस्था कलयुग की दुनिया में थी उस समय अगर मेरा अंतिम श्वास निकला तो मैंने जीवन भर मेरी योग्यता के अनुसार जो भी त्याग किया उसका मुझे फल क्या मिला। मुझे तो फूल बनना है, जो था वो भी कवाने तो नहीं आई, लेकिन सदाबहार के संग बहुत कुछ पाकर झोली भर के सबको बांटते रहने के लिए आई हूं ना। अभी तो मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। मेरे बुलाने से पहले वो मेरे पास आ जाता है। अक्सर वो मुझे इन एडवांस सूचनाएं देता है जिससे मैं सुरक्षित रहती हूं, और भी मेरे से सुरक्षित रहते हैं। समय हो चुका है, एक लास्ट का अनुभव का पॉइंट बोलती हूं। मुझे कार से सफर करते हुए दूसरे केंद्र पर जाना है। सुबह सुबह का समय है और मैं बाबा से कमरे में छुट्टी लेने गई हूँ। तो मुझे बाबा मुस्कुराकर वेलकम करने के बाद छुट्टी देते समय एक आंख थोड़ी सी दबा दी है, मतलब खुली छुट्टी नहीं है, छुट्टी तो है, उतना क्लियर संदेश है। तो मैं कभी भी सफर में बात नहीं करती, क्योंकि बिंदा बोलते हैं ना, एक सुनहरी मौका है मौन का लाभ लेने का। तो ड्राइवर भाई कुछ बोलने लगे, तो मैंने कहा नहीं, आप भी बाबा को जरा सीरियसली याद कीजिए, कुछ भी दूसरा याद न करते हुए। क्यों मेहंदी? नहीं, बाबा ने छुट्टी तो दी है लेकिन खुली छुट्टी नहीं दी। सुबह सुबह करीब करीब 5:30 बजे का टाइम है, और वो ऐसा बीच का रास्ता है शॉर्टकट का, जहां से गुजरने से मुझे 12-15 किलोमीटर का फासला कम पड़ता है, लेकिन उस ठंडी की रात में, उस प्रातः में सड़क पर कोई कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा। एक अमेजन गाड़ी है, उसमें 6-7 लोग सवार हैं, और मेरी गाड़ी और वो गाड़ी क्रॉस हो रहे हैं, और उसमें जो लोग हैं ना, इतना शोर मचा रहे हैं आपस में, अंदर अंदर हंसके खेल के बातें करते हुए, गाते हुए, इतना शोर मचा रहे हैं। और वो गाड़ी इस गाड़ी को इस कदर क्रॉस करके गई कि पूरा उसका हैंडल यहाँ से वहां तक मार्क करके गया कार को। ड्राइवर ने एकदम गाड़ी रोक दी, और मैंने उसको सीरियसली बोला कि तुम गाड़ी चालू करो, फिर भी चालू नहीं की। वो लोग आगे जाकर के रुक करके हंस रहे हैं सारे, और पीछे लौट के देख रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, वो 6-7 लोग हैं, बदमाश भी हो सकते हैं, और मुझे बाबा की खुली छुट्टी नहीं मिली, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी था इसलिए मैं निकली हूँ। और वो गाड़ी आखिर वहां चली, और मैं अपने ठिकाने पर बहुत सही तरीके से पहुंच गई। अब मेरा कहना ये है कि बाबा ने मुझे जो छुट्टी दी थी कि तुमको अगर जाना ही है तो जाओ, लेकिन है ना, लेकिन तो इस तरह से वो अपनी झंडियां दिखा देते हैं, हमें भी समझ में आ जाती है, क्योंकि दिल और दिमाग ये दोनों भी उसके हवाले किए हुए हैं। बस अब बस, और जैसी बस मैंने आपसे कही है, ऐसी बस अगर आप भी कहते रहेंगे अपने जीवन में कि अब बहुत खा लिया बस, अब बहुत पहन लिया बस, तो वो हमें उसके पास का सब कुछ दे देगा। शायद बस का उल्टा किया तो सब हो जाता है। अब ये भी बस और वो भी बस, और आज की बातें भी यहाँ ही बस। ओम शांति। तो आज के बाद आप न जिंदगी भर किसी से नाराज होंगे, और न अपने से किसी को होने देंगे। वायदा वायदा। धन्यवाद। ओम शांति। दुनिया में मुझसा कहां सब का नसीब है, कोई कोई अपने बाबा के करीब है। दुनिया में मुझसा कहां सब का नसीब है, दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न कोई माछी पार उतारे। दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न कोई माछी पार उतारे। साथ है माछी तो किनारा भी करीब है, दुनिया में मुझसा कहां सब का नसीब है। कोई कोई अपने बाबा के करीब है, दुनिया में मुझसा मसीह।